नमस्कार भारत, 29 सितंबर दिन रविवार, मैं हूं वात्सल्य राय। बारिश और बाढ़ से बेहाल उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले, पानी से पटी पटना की सड़कों पर चल रही है नाव, राज्य के 11 जिलों में अलर्ट।
पटना के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, उसको पहले लगाया गया है, जितने भी पंपिंग स्टेशन हैं सभी के सभी चल रहे हैं।
हूती विद्रोहियों का दावा, सऊदी सेना के हजारों सैनिकों को पकड़ा, आज कराएंगे परेड।
इत्लाक अमलियती नसर मिन अल्लाह अलअस्करियती अलवासिअती।
और खास बातचीत में एक एक्टिविस्ट ने साझा किया भारत प्रशासित कश्मीर की महिलाओं का दर्द।
वो हर एक लेवल पे सफर कर रही है, एक बच्चा है और उसकी माँ है, अब बच्चा सफर कर रहा है तो माँ भी सफर करेगी।
उर्दू अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। देश के कई हिस्सों में बाढ़ की वजह से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में स्थिति चिंताजनक है। राज्यों के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की वजह से सड़क यातायात और रेल यातायात भी बाधित हैं। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबर है। हांगकांग में बीते 17 हफ्तों से लोग लोकतंत्र की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। हांगकांग के संसद के पास दसियों हजार की संख्या में लोग जमा हुए। ये लोग छात्रों द्वारा शुरू किए गए अम्ब्रेला मूवमेंट की 5वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जमा हुए थे। इस मूवमेंट का लक्ष्य भी वही था जो इसे लेकर हांगकांग में पिछले 17 हफ्तों से प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल अन्ना ली ने अपने वहां होने की वजह बताई। आज का ये विरोध प्रदर्शन कई मायनों में बेहद खास है। ये अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने वाला है। 5 साल पहले हर कोई इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब हालात अलग हैं। लोगों ने बहादुरी दिखाई है और अपने मुद्दों के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। अन्ना ली के शब्द। अफगानिस्तान में शनिवार को नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न हुए। कई स्थानों पर मतदाताओं की लंबी कतार को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान के समय को 2 घंटे तक बढ़ाया भी। राष्ट्रपति पद के लिए हुए इस चुनाव में कुल 16 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच माना जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक 5 साल पहले हुए चुनाव की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत कम रहा है। वोटिंग के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर बम और मोर्टार से हमले भी हुए, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा करीब 80 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घायल हुए एक शख्स के रिश्तेदार रहीमुल्लाह ने बताया। चुनाव अच्छे से हुए, लेकिन हमारे लोग घायल हो गए हैं, कई मारे भी गए हैं और कई और भी घायल हैं। आप इस अस्पताल में जिन लोगों को देख रहे हैं वे सभी जख्मी हैं। हमें सुरक्षा चाहिए, हमें हमारे भावी राष्ट्रपति से सिर्फ सुरक्षा ही चाहिए। चुनाव के दौरान घायल हुए एक शख्स के परिजन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन के हूथी विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने बड़ी संख्या में सऊदी अरब के सैनिकों को पकड़ लिया है। हूथी विद्रोहियों के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि सऊदी अरब के नाजरान शहर के करीब सऊदी अरब की 3 ब्रिगेड ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सीरिया ने मांग की है कि अमेरिका और तुर्की की सेना उसके अधिकार क्षेत्रों से बाहर हो जाए। सीरिया ने चेतावनी देते हुए कहा है कि और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे जवाबी कार्रवाई का पूरा अधिकार होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी बात रखते हुए सीरिया के विदेश मंत्री वालिद अल मौलेम ने कहा कि अमेरिका और तुर्की देश के उत्तरी हिस्से में अवैध उपस्थिति बनाए हुए हैं। सीरिया ने इसे संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन बताया। सीरिया में करीब 1000 अमरीकी सैनिक अभी भी कुर्द बलों के समर्थन में मौजूद हैं। जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को उनके निधन के 3 सप्ताह बाद उनके पैतृक गांव में दफनाया गया। मुगाबे 95 वर्ष के थे। एक ओर जहां मुगाबे का परिवार चाहता था कि उनकी समाधि उनके गांव में ही बने, वहीं सरकार हरारे में नेशनल हीरोज एकर म्यूजियम में उनकी समाधि बनाना चाहती थी। ये जगह जिम्बाब्वे की राजधानी आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों के लिए आरक्षित है, लेकिन परिवार का तर्क था कि मुगाबे चाहते थे कि उन्हें उनकी मां की समाधि के ठीक बगल में जगह दी जाए। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। मानसून विदा होने को है, लेकिन जाते जाते ये मौसम उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों के लिए बड़ी परेशानी की वजह बन गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार की स्थिति ज्यादा खराब है। राजधानी पटना में स्थिति यह है कि प्रमुख सड़कों पर पानी भरने से नाव चलने की स्थिति बन गई है। कई जिलों में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिले भी बारिश की वजह से पानी पानी हो गए हैं। हमारी सहयोगी कमलेश मठेनी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में मौजूद सहयोगियों से बात की और दोनों राज्यों के ताज़ा हाल पर तैयार की है ये रिपोर्ट।
बिहार में बाढ़ के चलते हालात बहुत खराब हैं। सड़क पर कमर तक पानी भर गया है और लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ के लगभग सभी इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं और प्रशासन ने कई इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं बिहार में हमारी सहयोगी सीतू तिवारी।
बिहार बदहाल है। राज्य के लगभग हर हिस्से में बीते दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। ऊपर बादलों से पानी बरस रहा है और नीचे सड़क पर पानी जमा है। राजधानी पटना की बात करें तो यहां मुख्य सड़क में नाव चल रही है और लोग सड़क पर कमर तक भरे पानी में चलने को मजबूर हैं। स्कूल, दफ्तर, अस्पताल, सभी जगह बस पानी ही पानी जमा है। पटना की सरिता पांडे ऑटो चालक हैं, वो बताती हैं।
हम लोग ऑटो चलाते हैं, इतनी मुश्किल है, इतना जल जमाव है, सब जगह गड्ढे हैं, पानी है। एक तरफ सरकार बोलती है कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, क्या खाक स्मार्ट सिटी बनाएंगे जब पटना के जो नली गली का पानी ही निकल पा रहा है, तो क्या स्मार्ट सिटी बनेगा।
बिहार के मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 11 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय और जमुई में अलर्ट घोषित किया है। वहीं 15 जिलों में खतरा बताया है। ये 15 जिले हैं मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका और खगड़िया। इसके अलावा राज्य के 10 जिलों में मौसम विभाग बारिश की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ये जिले हैं रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और नवादा। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत ने बीबीसी को बताया कि राज्य के 4 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। वहीं पटना में भी लगातार हो रही बारिश से निपटने के इंतजाम किए गए हैं।
हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वो है समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर। पटना के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, उसको पहले लगाया गया है। दूसरा, हम लोग ट्रैक्टर्स काफी संख्या में लगा रहे हैं, बसेस को हम लोगों ने लाइन अप किया हुआ। इतने भी के पंपिंग स्टेशन हैं जिससे पानी की निकासी की जाती, वो सभी के सभी चल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में भी लोग प्रकृति के प्रकोप से जूझ रहे हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और नदियाँ उफान पर हैं। राज्य में करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र।
उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 3-4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं प्रमुख नदियों का पानी एक बार फिर चढ़ने लगा है। लगातार हो रही बारिश के चलते अब तक राज्य भर में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई मकान गिर गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले कुछ दिनों में अभी और बारिश की चेतावनी दी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिलों में पिछले 2 दिन से स्कूलों में और कॉलेजों में छुट्टी की जा रही है। वहीं गंगा, यमुना और कुछ अन्य नदियों में पानी बढ़ने के कारण बाढ़ की समस्या फिर विकराल होती जा रही है। प्रयागराज में कई इलाके अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि बरसात की वजह से ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के पूर्वी हिस्सों में भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुँचाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रभावित इलाकों का दौरा करने का भी निर्देश दिया है।
मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में राहत के आसार नहीं है, लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में प्रशासन को और मुस्तैद रहने की जरूरत होगी। कमलेश मठेनी, बीबीसी, दिल्ली।
बारिश और बाढ़ की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। लोग तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हैं। लोग किस तरह से परेशानियों की बात कर रहे हैं ये बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं भूमिका राय। जी भूमिका
जी, वात्सल्य
शासन प्रशासन तो अपनी ओर से जो कदम उठा रहे हैं वो हैं ही, लेकिन इसके अलावा लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हमें सोशल मीडिया के मतलब जरिए पता चल रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं, जैसे बिहार का एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक रिक्शा चालक है, वो पानी में फंसा हुआ है, घुटने तक पानी है और उसका रिक्शा आगे नहीं बढ़ रहा है। तभी ऊपर से एक आवाज़ आती है कि आप अपना रिक्शा यहीं खड़ा कर दें और जाएँ, हम देख रहे हैं। और इसके अलावा भारतीय सेना के ट्विटर हैंडल से कई तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में सेना के जवान जो हैं वो लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाते नजर आ रहे हैं,
राहत और बचाव के काम में लगी हुई है सेना।
और एक और वीडियो है सोशल मीडिया पर, ये एक वीडियो है जो वो अस्पताल का है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो जो है बिहार के एक अस्पताल का है जिसमें वार्ड में पूरा पानी भरा हुआ है, जो मरीज हैं, जो मरीज के साथ आए लोग हैं वो उसी बिस्तर पर बैठे हैं जिसपे मरीज बैठे हुए हैं और प्रशासन को लेकर नाराजगी है लोगों में। ये ट्विटर और फेसबुक के जरिए हमें पता चल रहा है, लेकिन एक दूसरे को मदद का आश्वासन दे रहे हैं, ये अच्छी बात पता चल रही है। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि कई बार बाढ़ की वास्तविक स्थिति जो है वो सामने नहीं आती है और ऐसे में सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है।
जी, अच्छा माध्यम बना हुआ है, दिक्कतें लगातार बनी है। आज के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, तो जो लोग प्रभावित क्षेत्रों में है वो सावधान रहें। शुक्रिया भूमिका राय। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी गठबंधन सेना के हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया है। हूती विद्रोहियों के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि उनके अभियान में सऊदी सेना के कई सैनिक मारे गए हैं। हूती विद्रोहियों के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान था। हालांकि सऊदी प्रशासन ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। पूरी रिपोर्ट भूमिका राय से।
यमन के हूथी विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्हें सऊदी अरब की गठबंधन सेना के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। हूथी विद्रोहियों के मुताबिक सऊदी अरब के नाजरान शहर के करीब सऊदी अरब की 3 ब्रिगेड ने आत्मसमर्पण कर दिया है और उन्होंने बड़ी संख्या में सऊदी अरब के सैनिकों को बंदी बना लिया है। हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता कर्नल याहिया सारिया ने BBC को बताया कि ये अभियान काफी सफल रहा।
إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران।
Victory from God सैन्य अभियान की नाजरान से शुरुआत की गई, जो हमारे देश के खिलाफ दुश्मन सेना के हमले के बाद से सबसे बड़ा अभियान है। ये बीते कुछ महीने से जारी है और दुश्मन को बड़े पैमाने पर जनहानि और हथियारों का नुकसान उठाना पड़ा है। दुश्मन की 3 सैन्य ब्रिगेड पस्त हो गईं, उनके तमाम सैनिकों और कमांडरों ने हथियार डाल दिए। हमने बड़े पैमाने पर उनके हथियार और मशीनें जब्त कर ली हैं। हमने दुश्मन सेना के हजारों लोगों को बंदी बना लिया है, कई अन्य मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। ये थे कर्नल याहिया के शब्द। बंदी बनाए गए सैनिकों की परेड आज कराई जाएगी और इसका प्रसारण हूथी नियंत्रण वाले अल मसीरा TV नेटवर्क पर होगा। सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों के दावे की पुष्टि नहीं की है। हूथी विद्रोहियों ने इसके पहले सऊदी अरब के 2 तेल संयंत्रों पर हमला करने का दावा किया था। ये हमला इसी महीने हुआ था, इससे विश्व स्तर पर तेल मार्केट प्रभावित भी हुई थी, लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार बताया था। ईरान ने इन आरोपों को गलत बताया था। यमन में साल 2015 से संघर्ष जारी है, तब हूथी विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था और राष्ट्रपति अब्दरबू मंसूर हादी को देश छोड़कर भागना पड़ा था। हूथी विद्रोहियों का उत्तरी यमन के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा है। सऊदी अरब राष्ट्रपति हादी के समर्थन में है। सऊदी अरब के अगुवाई वाले गठबंधन ने साल 2015 में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए थे। ये गठबंधन आज भी लगभग हर दिन हवाई हमले कर रहा है। हूथी विद्रोही भी सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करते रहे हैं। गृह युद्ध की वजह से यमन गहरे मानवीय संकट में फंस गया है। देश की करीब 80% आबादी यानी करीब 2,40,00,000 लोगों को मानवीय मदद की जरूरत है। करीब 1 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक साल 2016 से संघर्ष की वजह से 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका से भारत लौट आए। दिल्ली में उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। प्रधानमंत्री ने अमेरिका दौरे को कामयाब बताते हुए वहां की बातों को साझा किया। उन्होंने हाउडी मोदी कार्यक्रम का खास तौर पर जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने 3 साल पहले कल के दिन यानी 28 सितंबर को हुई सर्जिकल स्ट्राइक को भी याद किया।
साथियों, आज 28 सितंबर है। 3 साल पहले 28 की रात को ही मेरे देश के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत की आन बान शान को और अधिक दुनिया में ताकत के साथ प्रस्तुत किया। मैं आज 28 सितंबर की उस रात को याद करते हुए हमारे वीर जवानों के उस साहस को, उस पराक्रम को, मौत को मुट्ठी में लेकर के चल पड़े उन वीर जवानों को मैं आज प्रणाम करता हूं।
गौरतलब है कि मोदी ने इसके पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया था और बुद्ध का जिक्र किया था। उनके बाद महासभा में भाषण देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दुनिया को भारत और पाकिस्तान युद्ध की संभावनाओं को लेकर आगाह किया था। आगे बढ़ते हैं, बात भारत प्रशासित कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का खास दर्जा हटाए जाने के बाद लगाई गई कई पाबंदियां कश्मीर घाटी में अब भी जारी हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता और कई लोग अब भी हिरासत में हैं। कई एक्टिविस्ट इस स्थिति पर चिंता जाहिर करते रहे हैं। ऐसी ही एक एक्टिविस्ट हैं सफीना नबी। सफीना से हमारे साथी शकील अख्तर ने बात की और सबसे पहले पूछा कि मौजूदा दौर में लोग किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।
देखिए, जाहिर है कि जब आपको बंद किया जाता है, कमरे में नज़रबंद किया जाता है, तो कैसी आपकी फीलिंग होगी, वो कैफियत ही कैसी होगी। आपको ऐसा लगता है कि आपको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है किसी बुलबुल की तरह, जहाँ पे आप बाहर नहीं जा सकते, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कश्मीरी लोगों में वो एक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ये आज पहली बार नहीं देखा है। वो ये बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। मेरे ख्याल में 2010 लें, 12 लें, फिर 14 लें, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए और उन पर ऐसा मसला होता था, जनरली हम यूज्ड हो गए थे। लेकिन ये जो अभी सारा मामला हो रहा है कि आप फ़ोन आपने बंद कर दिया, इंटरनेट आपने बंद कर दिया, स्कूल्स बंद हैं, आप कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे आप बात करें, तो जो एंग्जाइटी है, जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो लोगों के इमोशंस है वो भी कम नहीं हो रहे हैं।
तो जाहिर है कि लोग मिलजुल तो नहीं पा रहे हैं इतना, लेकिन अमूमी तासुर क्या है, लोगों के जहन में किस तरह की बेचैनी या सोच है उनके अंदर?
देखिए, हर कोई इंसान बहुत परेशान है। आप डिफरेंट तबकों को ले लीजिए, जो बंदा दिन में कमाता है, शाम को खाता है, उनकी क्या हालत होगी, उनके बच्चों की क्या हालत होगी। जब एक बाप अपने बच्चे को डॉक्टर तक नहीं ले जा सकता है, तो आप उसकी हालत समझ सकते हैं। लेकिन हर कोई अपनी अपने लेवल पे सफ़र कर रहा है। जैसे औरतें अपने लेवल पे सफ़र कर रही हैं, मर्द अपने लेवल पे सफ़र करते, बूढ़े बच्चे सब अपनी अपनी जगह। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी एडोलसेंट वाली जो एज है और जो हमारे बच्चे हैं, उन पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि मतलब उनका जो साधन है वो आपने छीन लिया है एक्सप्रेस करने का। अब वो किससे एक्सप्रेस करें? हमारे यहाँ अभी भी जैसे मोहल्ले में बूढ़े लोग बैठ के बात करते थे, आपने अब बंद कर दिया है, 4 लोग साथ में नहीं बैठ सकते, तो आप कहाँ एक्सप्रेस करोगे? और वो जो एक इमोशन है वो अंदर ही अंदर उभर रहा है अभी, और वो कब फटेगा किसी को कुछ मालूम नहीं है, किसी को नहीं पता।
जो औरतों का एक तबका है, वो कॉन्फ्लिक्ट में एक ज़्यादा मुश्किलों से गुजरती हैं, या उनकी किस तरह की सिचुएशन होती है, उनकी क्या सोच रहती है इन हालात में?
औरतों का जो है, आप देखिए, वो हर एक लेवल पे सफ़र कर रही है। एक बच्चा है और उसकी माँ है, अब बच्चा सफ़र कर रहा है तो माँ भी सफ़र करेगी उसके साथ। आपका बच्चा बाहर जा रहा है तो आप उस परेशानी में रहते हो, बाहर गया है वापस आएगा कि नहीं आएगा। आपके हस्बैंड है, आप ये सोच के परेशान हो रहे हो, अगर वो किसी काम से निकला या कुछ खरीदने निकला है, ज़रूरी चीज़, दवाई वगैरह, तो वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो आप देखिए, एक औरत पे कितना प्रेशर है, जो घर में मसाइल होते रहते हैं, औरतों के साथ मसाइल होते रहते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट में उन चीज़ों को आप अहमियत नहीं देते हो। लेकिन जब ये सब चीज़ें होती है, तब ये तशद्दुद ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि मर्दों की फ्रस्ट्रेशन कहाँ जाएगी, औरतों पे ही निकलेगी ना एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप कहीं नहीं जा रहे, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ आप बात करें, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप इसको एक्सप्रेस कर पाएं, तो फिर आपका फ्रस्ट्रेशन औरतों पे निकलेगा ना। और औरत तो आपको, आपने वो उस पेट्रियार्कल सिचुएशन में देखा ही है कि औरत कैसे सफ़र करती है।
ये थी सफीना नबी और उनसे बात कर रहे थे शकील अख्तर। और अब बात महाराष्ट्र की। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के कारणों और इसे लेकर होने वाले असर पर हमारी सहयोगी कमलेश मठेनी ने बीबीसी संवाददाता मयुरेश कोनूर से बात की, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
आणि ज्या साहेबांच्यामुळे मी इथपर्यंत पोहोचलेलो आहे, त्या महत्वाच्या पदांच्या पर्यंत, उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत,
शरद पवार साहब की वजह से मैं डिप्टी सीएम तक पहुंचा, उनकी मेरी वजह से बदनामी हो रही है। ईडी के प्रेस नोट में पवार साहब का नाम आया, इस वजह से मैं बहुत तनाव में आ गया। मुझे ये सब ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने इस्तीफा देने के बारे में सोचा।
ये थे अजीत पवार, जो शनिवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। अजीत पवार एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे हैं और दोनों का नाम हाल ही में भ्रष्टाचार के मामले में सामने आया है। अजीत पवार ने इसे राजनीतिक साजिश कहते हुए अपने इस्तीफे की वजह बताया, लेकिन इसके पीछे अंदरूनी लड़ाई होने की चर्चा भी हो रही है।
इस्तीफा देने की वजह जो शरद पवार और अजीत पवार खुद जो बता रहे हैं वो ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के स्टेट बैंक जो है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसमें एक घोटाला हुआ था, इसके आरोप हुए थे, जिसमें शरद पवार और अजीत पवार दोनों का नाम है। इसका कॉग्निजेंस लेते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी एक अलग ऑफेंस रजिस्टर किया है, उनमें भी इन दोनों का नाम है। उनका ये कहना है, शरद पवार और अजीत पवार का, कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये कार्रवाई है, इसकी वजह से अजीत पवार व्यथित हुए थे। हालांकि बताना ये जा रहा है कि एनसीपी में और खुद पवार फैमिली में कुछ तरीके की जो फाइट है, इन फाइट है, वो अंदर से चल रही है। जो असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, इस इलेक्शन में किस तरह की टिकट्स दी जाएंगी, किस तरह की किसका रोल होगा, क्या अजीत पवार के ऊपर आरोप हुए हैं इसलिए उनको साइडलाइन किया जा रहा है, इस तरह की भी कुछ बातें आ रही हैं। हालांकि इन बातों पर कोई भी खुलकर नहीं सामने कह रहा है।
पार्टी की अंदरूनी लड़ाई पर थोड़ा और रोशनी डालिए कि क्या किस बात की लड़ाई है।
हमेशा ये बातें होती रही कि क्या शरद पवार के बाद एनसीपी और महाराष्ट्र के समान कौन संभालेगा, क्या शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को ये देंगे या फिर अजीत पवार को देंगे। इससे पहले भी अस्वस्थ होकर या फिर किसी डिससेटिस्फेक्शन की वजह से अजीत पवार ने अपनी जो नाराजगी है वो हमेशा पब्लिकली जताई है। बाद में अजीत पवार के बेटे जो है पार्थ पवार, उन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़े थे, वो सिर्फ महज 24 साल के हैं। बताया उस वक्त ये भी जा रहा था कि शरद पवार खुद लोकसभा चुनाव लड़ना जा रहे थे, लेकिन जैसे ही पार्थ पवार को लड़ने की उनकी मंशा थी, तब शरद पवार ने ऐन वक्त पर अपना नाम जो है वो लोकसभा के चुनाव से बाहर लिया था, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। तब भी एक 2019 के अभी 6 महीने पहले इलेक्शन जब आए थे, तब भी एक तरह का ये नाराजगी जो है विद इन फैमिली और विद इन पार्टी को सामने आई थी।
उनके इस्तीफे से क्या असर पड़ेगा?
कल दिन भर महाराष्ट्र में एक मूवमेंट बना था, एनसीपी के सारे कार्यकर्ता ठेका जगह जगह पर आंदोलन कर रहे थे, धरने दे रहे थे, मुंबई में जा रहे थे। देखने को ये मिला कि एन चुनाव के वक्त पर पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो गैल्वनाइज हो रहे हैं, ग्राउंड पे कुछ मूवमेंट हो रही है। ये दोपहर तक हुआ, लेकिन बाद में दोपहर में जैसे ही अजीत पवार की स्थिति की बात आ गई तो पूरा जो मूवमेंट बना था वो चला गया। तो वो खुद चुनाव नहीं अभी इस्तीफा दे चुके हैं, तो बारामती में आके या वो चुनाव लड़ेंगे या फिर और किसको चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा, क्या उनके बेटे लड़ेंगे या फिर पवार फैमिली से और कोई लड़ेगा, ये सारे सवाल जो है वो अब पब्लिकली पूछे जाएंगे।
मयूरेश कोनूर से बात कर रही थी कमलेश मठेनी। और अब आज के अखबारों की बात भूमिका राय के साथ। जी भूमिका।
जी वात्सल्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिनों बाद अमेरिकी यात्रा से भारत वापस आ चुके हैं, तो इस खबर को लगभग हर अखबार ने पहले पन्ने पर लिया है। नवभारत टाइम्स ने हेडिंग लगाई है, यूएन में चीन पाक का झूठ, बम भारत ने किया बेदम। तो ये वहाँ की खबर है प्रधानमंत्री के लौटने की। इसके अलावा
तस्वीरें भी हैं प्रधानमंत्री का, जो स्वागत हुआ है,
जो भव्य स्वागत हुआ है, और मतलब कार्यकर्ता तो जुटे ही थे, आम लोग भी वहाँ जुटे थे, नृत्य संगीत का भी कार्यक्रम बच्चों ने पेश किया। इसके अलावा भारत का पहला हवा से हवा में मार करने वाला अस्त्र मिसाइल वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। यूपी के चर्चित उन्नाव कांड की पीड़िता और उसके परिवार को दिल्ली में कोई घर देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही बैकग्राउंड पता चल रहा है, लोग घर देने से मना कर दे रहे हैं। ये शिकायतकर्ता के वकील ने डिस्ट्रिक्ट जज को सूचित किया है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने पैन को आधार से लिंक कराने की समय सीमा 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दी है। और
ये हमारे श्रोताओं के लिए बिल्कुल जरूरी जानकारी है।
और इसके अलावा एक और खबर है कि अनुच्छेद 370 से जुड़ी जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उन पर 1 अक्टूबर से सुनवाई शुरू हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ हुई है, उसमें 4 आतंकियों को मार गिराया गया,
चरमपंथियों को ऐसा दावा किया गया है। बहुत शुक्रिया भूमिका राय अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब भूमिका राय से ही सुनते हैं उर्दू अखबारों की समीक्षा, जिसे तैयार किया है इकबाल अहमद ने।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते भी भारत प्रशासित कश्मीर से जुड़ी खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहीं। लेकिन 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अब इस बात पर बहस हो रही है कि किसने क्या बोला और कौन दूसरे पर भारी पड़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएन में तकरीबन 50 मिनट लंबा भाषण दिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 17 मिनट का एक छोटा सा भाषण दिया। अखबार नवाए वक्त लिखता है कि इमरान खान की स्पीच के बाद ट्विटर पर इमरान खान वॉइस ऑफ कश्मीर टॉप ट्रेंड करने लगा। अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक सूचना मंत्रालय की विशेष सलाहकार फिरदौस आशिक ने कहा, इमरान खान ने पूरी इस्लामी दुनिया के प्रवक्ता के तौर पर भाषण दिया। उन्होंने इस्लाम का असल चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। इमरान खान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लीडर बनकर सामने आए हैं। पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी इमरान खान की स्पीच की तारीफ की है। अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा कि इमरान खान ने इस्लाम, पाकिस्तान और कश्मीर का मुकदम बड़ी हिम्मत से दुनिया के सामने पेश किया। आफरीदी ने कहा कि अल्लाह इमरान से कोई बड़ा काम लेना चाहता है। पूर्व कप्तान रमीज रजा ने इमरान खान की जमकर तारीफ की। अखबार नवाए वक्त के मुताबिक रमीज रजा ने ट्वीट किया, जबरदस्त मिस्टर खान।
उर्दू अखबारों की समीक्षा सुना रहे थे भूमिका राय। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आखिरकार सेमीफाइनल में पी कश्यप की हार के साथ ही भारत की चुनौती भी पूरी तरह समाप्त हो गई। पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में पी कश्यप को शीर्ष वरीयता हासिल। जापान के किंतो मोमोता से 21-13, 21-15 से हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में किंतो मोमोता का सामना चीन ताइपे के चोउ तियनचेन से होगा, जिन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में अपने ही हमवतन गैर वरीयता हासिल वांग जू वेई को 12-21, 21-13, 21-11 से हराया। जबकि महिला एकल वर्ग में छठी वरीयता हासिल थाईलैंड की रतचानो किंतानोन ने सेमीफाइनल में तीसरी वरीयता हासिल चीन ताइपे की ताइजू यिंग को 21-19, 21-11 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। उनके अलावा दूसरे सेमीफाइनल में सातवीं वरीयता हासिल चीन की ही बिंग जियाओ भी जीतने में कामयाब रही। उधर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अगले महीने की 2 तारीख से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी और उससे पहले बोर्ड अध्यक्ष एकादश और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया 3 दिवसीय अभ्यास मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। दक्षिण अफ्रीका के पहली पारी में 6 विकेट पर 279 रन के जवाब में बोर्ड अध्यक्ष एकादश ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट खोकर 265 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाने के लिए तैयार रोहित शर्मा केवल 2 गेंद खेलकर बिना कोई रन बनाए फिलेंडर की गेंद पर हेनरिक क्लासेन को कैच दे बैठे, लेकिन मयंक अग्रवाल ने 39, प्रियांक पांचाल ने 60, सिद्धार्थ लाड ने नाबाद 52 और विकेटकीपर बल्लेबाज एस भरत ने 71 रन बनाकर जमकर हाथ खोले। अब रोहित शर्मा भले ही अभ्यास मैच में नहीं चले, लेकिन उनसे निराश नहीं है पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता अशोक मल्होत्रा।
वो ऐसे खिलाड़ी हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि खासकर इंडियन कंडीशन में वो अच्छा प्रदर्शन करें। मैं जानता हूं कि 2 बॉल में आउट हो गए हैं, लेकिन उनके पास वो क्षमता है, उनके पास वो प्रतिभा है और उनको अगर आप थोड़ी देर मौका देते हैं तो फिर हो सकता है आपके लिए वो वीरेंद्र सहवाग वाला रोल अदा कर सकते हैं, आक्रामक रुख अपना सकते हैं।
वहीं भारत के स्टार धाविका दुती चंद को दोहा में जारी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निराशा का सामना करना पड़ा। वो 100 मीटर हीट स्पर्धा में 11.48 सेकंड के समय के साथ 7वें स्थान पर रही, जबकि कुल मिलाकर 47 धाविकाओं के बीच 37वें स्थान पर रही और बाहर हो गई।
और चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। देश के कई हिस्सों में बाढ़ की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के क्रिश्चियन कोलमैन ने दोहा में चल रही एथलेटिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस जीत ली है। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर बम और मोर्टार से हुए हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबर है। हांगकांग में बीते 17 हफ्तों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने बड़ी संख्या में सऊदी अरब के सैनिकों को पकड़ लिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी रविशंकर कुमार के हाथ। दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।